अध्याय धुंधली रोशनी और टूटी इज्जत। क्लब के भीतर रात अब और गहरी हो चुकी थी। धुएं और शराब की गंध के बीच संगीत की धड़कन और भी तीव्र थी। लोग अपने अपने नशे में झूम रहे थे, मगर रैना का दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रे थामे उसने खुद को संभाला और विक्रम की टेबल के पास आ खड़ी हुई। विक्रम ने ग्लास मेज पर रखा और झुककर बोला, तो मिस रैना, मैं तो सुना था कि तुम कहीं और रातें बिताती हो, ड्यूटी बजाती हो, आज यहाँ कैसे? उसकी आवाज में वो पुरानी तंज और मीठा जहर घुला था। रैना ने गहरी सांस ली। मुस्कान ओढ़ना उसका पेशे का हिस्सा था, मगर भीतर उसका खून खौल रहा था। उसने ट्रे सीधी करते हुए धीमी आवाज में कहा, सर, मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ, पर्सनल बातें करने का समय नहीं है। उसकी नज़र झुकी रही ताकि उसकी आंखों में उमड़ता गुस्सा किसी को ना दिख जाए। विक्रम हंस पड़ा, हल्की सी मगर चुभने वाली हंसी। अच्छा लगता है रैना तुम्हें यहाँ देखना। आखिर सच यही है ना कि तुम्हें हमेशा वहीं लौटना था जहाँ रोशनी धुंधली हो और लोग सस्ते तमाशे तलाशते हों। उसके शब्द सीधे दिल में कांटे की तरह चुभे। रैना चाहती तो थी कि पलटकर कह दे, नहीं, मैं मजबूरी में आई हूँ, लेकिन उसकी जुबान जमी रही। उसे नियम निभाने थे, नौकरी बचानी थी। विक्रम ने फिर ग्लास उठाया, एक सिप लिया और कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसकी आंखें गहरी और बर्फ जैसी ठंडी थीं। जानती हो, मैं अखिल को अच्छे से जानता हूँ, कितना घटिया इंसान है। पहले तो तुम्हें मजबूर किया कि तुम्हें उससे बांध दिया जाए, और फिर जब मन भर गया तो ऐसे फेंक दिया जैसे कोई पुराना खिलौना। और अब तो वो दूसरी औरतों के रंगीन किस्सों में मशगूल है। रैना के हाथ ट्रे के नीचे कांप उठे, उसका दिल चीर गया। अखिल का नाम आते ही उसकी सांसें भारी हो गईं। रुको, उसके मन ने कहा, तो क्यों सुन रही है इसकी बातें? ये वही है जिसने तेरा जीवन नर्क बनाया। पर होंठ बंद रहे, ड्यूटी के नाम पर उसे सब सहना पड़ रहा था। विक्रम धीरे धीरे उसकी ओर करीब झुकाया। उसकी सांसों की गंध, शराब की तेज मिलावट सीधे रैना के चेहरे से टकरा रही थी। उसने कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, जानती हो रैना, सच तो ये है कि तुम कभी उस आदमी की थी ही नहीं, तुम हमेशा अकेली थी, और आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है तुम्हें संभालने वाला सिर्फ मैं हूँ। रैना का गला सूख गया। उसने ट्रे कसकर पकड़ ली, मानो अगर छोड़ दे तो पूरा जिस्म बिखर जाएगा। वो चाहती थी चीख पड़े, दूर रहो मुझसे। वो चाहती थी फेंक दे वो ट्रे और भाग जाए उस शोर से, लेकिन उसके पैरों में जिम्मेदारियों की जंजीरें बंधी थीं। विक्रम की निगाहें उसकी थकान और टूटन को पड़ चुकी थीं। उसकी ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई। देखो, मैं सीधे सीधे कहता हूँ, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मेरे घर पर आना। रैना का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम ने अपनी उंगलियों से टेबल पर लय बनाई और आगे बोला, मेरे पास एक सौदा है तुम्हारे लिए, एक ऐसा सौदा जो तुम्हें मालामाल कर देगा, तुम्हारे सारे कर्ज चुक जाएंगे। तुम्हें इस गंदे क्लब में खड़ा होकर ये नकली मुस्कानें नहीं बेचनी पड़ेंगी। उसकी आवाज में लालच नहीं था, वो एक ठंडी ध्वनि थी, जैसे शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसाने से पहले मीठा दाना डालता है। रैना के होंठ कांप उठे, उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने सिर झुका लिया। सर, मैं ऑर्डर ले आती हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से ट्रे को संभाला और पीछे मुड़ने लगी, लेकिन विक्रम की आवाज फिर उसके कानों से टकराई। सोच लो रैना, एक बार मेरे घर आ गई तो फिर तुम्हें कभी इस धुंधली रोशनी में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। रैना का कदम भारी हो गया, दिल में तूफान था। क्या सचमुच? एक पल को उसके भीतर का दर्द चीखा, क्या सचमुच इस नरक से निकलने का यही रास्ता है? पर उसी पल उसके भीतर की आत्मा ने भी सवाल दागा, या फिर यह एक और जाल है? क्या यही फिर से तुझे तोड़ेगा? उसकी आंखें भीग गईं। वो भीड़ में खुल गई। डीजे की आवाज और भी तेज थी, लोग अब भी झूम रहे थे। किसी को उसकी आंखों से गिरते आंसू दिखाई नहीं दिए, लेकिन उसके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, क्या वो विक्रम के घर जाएगी? उसके कदम डगमगाए, मगर उसने खुद को संभाला। उस रात की धुंधली रोशनी, शराब की गंध और टूटी हुई इज्जत के बीच रैना का दिल एक नए मोड़ पर आकर ठहर गया। उसका जवाब अगली रात ही तय होगा।